ओम शांति। आज 20 दिसंबर 2023 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा कहते मीठे बच्चे अपनी रॉयल चलन रखो। आपकी चलन कैसी हो? रॉयल हो। सेवा करो, श्रीमत पर चलते रहो, श्रीमत पर चलते रहो। तो बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो आपकी बुद्धि क्या हो जाएगी? रिफाइन हो जाएगी। आपकी बुद्धि रिफाइन हो जाएगी। माताओं का रिगार्ड रखना है, माताओं का रिगार्ड रखना है। प्रश्न, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है? कौन सा काम एक बाप का है, किसी मनुष्य का नहीं? मतलब कोई भी मनुष्य वो काम नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ एक बाप कर सकता है और कोई मनुष्य नहीं कर सकता? सारे विश्व में शांति को स्थापन करना ये एक बाप का काम है, एक बाप का काम है। मनुष्य भल कितनी भी कॉन्फ्रेंसेस आदि करते हैं, करते रहें, पीस हो नहीं सकती। कितना भी करे विश्व में शांति वो ला नहीं सकते। शांति का सागर बाप जब बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं तब पीस स्थापन होती है। कब होती है पीस स्थापन? जब बाप आकर बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते तब पीस स्थापन होती है। पवित्र दुनिया में ही शांति है। तुम बच्चे ये बात सबको बड़ी युक्ति से और भक्के से समझाओ, क्योंकि अपवित्रता में ही बिगाड़ है, अज्ञानता में ही बिगाड़ है। जब अपवित्र कोई चीज होती है वो दुख देती है, पवित्र चीजें कभी भी दुख नहीं देती। दुख का कारण ही अपवित्रता। महात्मा बुद्ध ने कहा दुख का कारण शरीर है, महावीर जी ने कहा दुख का कारण शरीर है, चार्वाक ने कहा शरीर ही जीवन है, और वेद कहते हैं आत्मा ही जीवन। आत्मा ही शरीर के साथ चलती है तो जीवन है। अब परमात्मा भी आकर कहते बच्चे आत्मा का जीव में प्रवेश करने से जीवन आरंभ होता है, आत्मा का जीव से अलग होने पर जीवन समाप्त। जीवन का आरंभ आत्मा के शरीर में प्रवेश होने से। चार्वाक ने क्या कहा? शरीर ही जीवन है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्जे उठा करके भी घी पियो।
भाई सत्संग प्रेम का बराबर ही है।
हां जी,
आत्मा के बगैर तो शरीर भी काम नहीं करता, शरीर के बगैर आत्मा भी काम नहीं कर सकता,
इसमें कोई शक नहीं। परमात्मा ने यही तो कहा, आत्मा ने जीव में प्रवेश किया, जीवन आरंभ। आत्मा ने जीव को छोड़ा, जीवन खत्म। परंतु चार्वाक ने कहा आत्मा वात्मा परमात्मा कुछ नहीं होता, ये शरीर है, कर्जा उठा करके भी जी खाओ, किसने देखा? ठीक है, ये चार्वाक का मत था। हां जी, कर्जे उठा करके भी घी खाओ, मतलब कर्जा उठाकर मौज करो, मरने के बाद किसने देखा? ठीक है, अब मौज करो, जो करना खाओ पियो, करो आनंद, बर्तन साफ करेगा परमानंद। हाँ, ये आपका ठीक है। ये चार्वाक था उसी टाइम, जिस समय एक तरफ वेद लिखे जा रहे थे उस टाइम चार्वाक को नास्तिक कहा जाता है, कि दूसरी तरफ ये था, और तीसरी तरफ महावीर जी थे, उन्होंने कहा भाई ये दुख का कारण हमारा शरीर है, दुख का कारण हमारा शरीर है, इसको ज्यादा से ज्यादा सजा दो, यदि ये कहना नहीं मानता है, सर्दी है तो ठंडे पानी में खड़ा करो, गर्मी है तो धूप में खड़ा करो, आग जला करके धूप में खड़ा करो, ये शरीर ही दुख का कारण है, इसको ज्यादा से ज्यादा उपवास कराओ, ज्यादा से ज्यादा इसको कष्ट दो, तभी ये मानेगा, इसको सजा दो, क्योंकि ये ही हमें दुख या गलतियां करने के लिए कहता है। तो इतना हार्ड शरीर के लिए उसने नियम बनाए। और महात्मा बुद्ध आया, उसने कहा भाई इतना ज्यादा इस शरीर पर जुल्म भी नहीं करो, और इतना ज्यादा आराम पसंद भी नहीं बनो। ठीक है, तो उनका कहना क्या था, वीणा की तारों को इतना टाइट नहीं करो जो टूट जाए, और वीणा की तारों को इतना ढीला भी ना रखो कि सुरी ना निकले, आराम पसंद भी नहीं बनो और इस शरीर पर ज्यादा जुल्म भी नहीं करो। तो उसके विचार को मैक्सिमम लोगों ने स्वीकार किया। अब हाँ जी, इस शरीर के द्वारा ही तुम अपना श्रेष्ठ भाग्य लिखेंगे, यदि आपने शरीर की संभाल नहीं की तो इस शरीर के द्वारा बिना आप कुछ लिख नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो आपने अपना श्रेष्ठ भाग्य भी इसी शरीर के द्वारा ही बनाना है। इसलिए मेरे शरीर को तंदुरुस्त रखो, जब आपका मन दुरुस्त होगा तो तन भी आपका दुरुस्त हो जाएगा। बड़ी युक्ति से भक्के से समझाओ तब बाप का नाम बाला हो। गीत, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूं प्रभु जी मेरी लाज रखो। ओम शांति। ये गीत तो भक्ति बारक का है, गाया हुआ है, क्योंकि एक तरफ भक्ति का प्रभाव है और दूसरी तरफ अज्ञान का प्रभाव है। दुनिया में एक तरफ भक्ति अति पर जा रही है, अति पर, और एक तरफ ज्ञान का प्रभाव भी अब बढ़ता जा रहा है। भक्ति का प्रभाव कैसे बढ़ता जा रहा है, मंदिरों पर कितना कितना जोर दे रहे हैं, सारे मंदिर मस्जिदें सब तोड़ो और मंदिर बनाओ, करो जुल्म अच्छी तरह, तैयारियां कर रहे हो आग लगाने की, है ना, खूब करो। रात दिन का फर्क है, कौन सा फर्क है, ये तो बहुत सहज है, भक्ति है रात, ज्ञान है दिन, भक्ति है भटकना, ज्ञान है अपनी मंजिल पर पहुंचने का रास्ता। भक्ति में भटक रहे हैं, ढूंढ सारे भगवान को रहे हैं, मिलना सारे भगवान से चाहते हैं, परंतु वो रास्ते कैसे हैं, भूल भुलैया के रास्ते हैं, जिसमें वो इतने फंसते जा रहे हैं और रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दुखी हैं, कुछ मिल नहीं रहा है, पर तो करे क्या, कोई रास्ता तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो रास्ता दिखाने वाला अब आया है। बाबा कई बार मुरलियों में कहते, भूल भुलैया में जब भटक जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, तो फिर वो पुकारते हैं, फिर जो है ना, जो वहां के रहने वाले होते हैं गाइड, वो उनको जाकर बाहर निकाल कर लाते हैं।
ये नारनौल में है ना भूल भुलैया, उसके अंदर चले जाते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं किधर जाना,
किधर जाना है, वो वहीं भटकते रहते हैं और थक जाते हैं बेचारे, फिर वहां जो गाइड होते हैं ना, वो फिर उनको निकाल कर लाते हैं, उनके पास निशानी होती है भी किधर किधर से जाना है। नहीं तो भटकते रहो। भक्ति है रात और ज्ञान है दिन, भक्ति में है दुख, जब भक्त दुखी होते हैं तो भगवान को पुकारते हैं, फिर भगवान को आना पड़ता है दुखियों का दुख दूर करने के लिए। फिर बाप से पूछा जाता है, ड्रामा में क्या कोई भूल है? बाप कहते हैं हाँ। बाबा से पूछा जाता है, ड्रामा में कोई भूल है? बाप कहते हैं हाँ, बड़ी भूल है। कौन सी बड़ी भूल है
भाई? ये ड्रामा भूल नहीं है, बाबा कहता है कि जो कुछ करोगे अपने आप वैसा ही फल पाओगे, तो आज बाबा कहाँ से मेहरबान बन के आ गया?
आज बता रहा है भूल है।
दुखियों को दूर करने के लिए
भूल क्या है कि मुझे भूल जाते हो। कब भूल जाते हैं बाबा को? हाँ, बाबा परम धाम में सोया पड़ा होता है, आप चुपके से बाहर निकल के आ जाते हो।
बाबा सोया पड़ा है, छोड़ के भाग
जाते हो। हाँ, छोड़ के भाग जाते हो, फिर याद भी नहीं करते हो, क्योंकि तुम्हारा पेट भरा हुआ है, स्वर्ग में सारे सुख है तुम्हारे पास, तो तुम मुझे याद नहीं करते हो। जब तुम्हारे जीवन में दुख आते हैं तब तुम मुझे पुकारना शुरू करते हो, जब आपके दुख की अति होती है तब मैं आता हूँ, तो मुझे भूल जाते हो। कौन भुलाता है तुम्हें? माया रावण भुलाती है। कहाँ से आती है माया रावण? हम माया रावण को आके पकड़ते हैं। माया रावण का दरवाजा है ये शरीर, हम परम धाम से निकले और इस शरीर में आ गए। अब जब हम आ ही गए माया के राज्य में, अब ये माया तो फिर लुटेगी। तो ये खेल तो पहले दिल से शुरू हो जाता है। इस देह के प्रति आकर्षित होना ही बाप को भूलने का आधार है। भल हम सतो प्रधान थे, पवित्र थे, परंतु प्रभाव तो देह के आ गए ना, देह के अंदर घुस गए ना, अब हमारी गुण शक्तियां सातों के सातों, आठ सातों गुण आठों शक्तियां धीरे धीरे कम होनी ही होनी। बाप बैठ समझाते हैं बच्चे, ये खेल बना हुआ है स्वर्ग और नर्क होता है, तो भारत में ही कोई मरता है तो कहते हैं वैकुंठ वासी हुआ, ये तो जानते नहीं स्वर्ग या वैकुंठ कब होता है, ये तो जानते ही नहीं कि वैकुंठ और स्वर्ग कब होता है। जो मनुष्य पुनर्जन्म जरूर स्वर्ग में ही लेंगे, जो स्वर्ग में शरीर छोड़ेंगे, जब स्वर्ग होता है तो वो पुनर्जन्म कहाँ लेंगे? स्वर्ग में लेंगे। और शरीर वो नरक में छोड़ेंगे तो पुनर्जन्म कहाँ लेंगे? नरक में ही लेंगे। अब भी तो है ही नरक, तो पुनर्जन्म भी जरूर नरक में ही लेंगे। जब तक स्वर्ग की स्थापना हो, जब तक स्वर्ग की स्थापना हो, मनुष्य
ये कलयुग और सतयुग है, तो हम कलयुग के बॉर्डर पर खड़े हैं, सतयुग लगने वाला है, तो हम उसमें से कैसे कलयुग में रहेंगे, तो सतयुग में जा रहे हैं।
देखो, कलयुग के बॉर्डर में और सतयुग के बॉर्डर में, क्योंकि आप बॉर्डर पर खड़े रहे हो, आप जब तक चाहोगे नहीं कि मैं पाकिस्तान में जाऊं, तब तक आप पाकिस्तान में नहीं जा सकते, वो पवित्र दुनिया है, और आप हिंदुस्तान में खड़े हो नर्क की दुनिया में। आप सोचते ही नहीं कि मुझे स्वर्ग में जाना है, आप नर्क में ही खड़े हैं, पतित दुनिया में ही खड़े हैं, पतित भारत में खड़े हैं जी, क्योंकि आप बंधे हुए हैं पतित भारत के साथ। हाँ जी,
मैंने
बॉर्डर पर कहा ना आपने, तो बॉर्डर तो यही है ना। हाँ, एक ही बात है, क्या है ना कि हमारा इस देह के साथ, देह की संबंधियों के साथ इतना मोह है कि हम पवित्र दुनिया में पाक स्थान में जाना ही नहीं चाहते, जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें यही अच्छा लग रहा है हमारे, है ना। हाँ, तो जब हम इससे छूटे तब तो हम पवित्र दुनिया में जाएं। एक है ईश्वरीय अथवा राम संप्रदाय, दूसरा है रावण संप्रदाय, सत्युग त्रेता में है राम संप्रदाय, उनको कोई दुख नहीं है, उनको कोई दुख नहीं है, अशोक वाटिका में रहते हैं, फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होता है। अब बाप फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, वे है सबसे सर्वोत्तम धर्म, वो है सबसे सर्वोत्तम धर्म। धर्म तो सब है ना, धर्म की कॉन्फ्रेंस होती है, धर्म की कॉन्फ्रेंस होती है, भारत में अनेक धर्म वाले आते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब जो भारतवासी धर्म को मानने वाले ही नहीं, वो कॉन्फ्रेंस क्या करेंगे, वो कॉन्फ्रेंस क्या करेंगे। वास्तव में भारत का प्राचीन धर्म तो है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म, हिंदू धर्म तो है नहीं, हिंदू तो कोई धर्म है नहीं, सबसे ऊंच है देवी देवता धर्म। अब कायदा हो, कायदा कहता है सबसे ऊंचते ऊंच धर्म वाले को गद्दी पर बिठाना है, बिठाना चाहिए, सबसे आगे किसको बिठाएं। इस पर भी कभी उन्हों का झगड़ा लग पड़ता है, कभी उन्हों का झगड़ा लग पड़ता है। जैसे एक बार कुंभ के मेले में झगड़ा हो गया था, वो कहे पहले हमारी सवारी चले, वो कहे पहले हमारी, ये जो नागे होते हैं जो तपस्या करते रहते हैं जंगलों में, उनके अखाड़े बने हुए हैं, वो सारे अपने चेलों के साथ आते हैं स्नान करने के लिए, बाकी सारी जिंदगी जो 6 महीने साल जो भी है कभी ना आवे, परंतु एक कुंभ पर अर्ध कुंभ पर या साल में कोई विशेष दिन वो वहां आते हैं। वो कहते पहले हम नहाएंगे, पहले हम नहाएंगे, आपस में लड़ पड़ते, नहाने के चक्कर में लड़ पड़ते। अरे भाई इतनी बड़ी गंगा नदी इतनी दूर से उतनी दूर बह रही है, तुम जाके दूसरी जगह नहा लो, क्या फर्क पड़ गया, उस जगह नहाने से क्या मिलेगा और उस जगह नहाने से क्या मिलेगा, हाँ पता नहीं क्या है, लड़ पड़े। तो अब इस कॉन्फ्रेंस में बच्चों को ये समझाना है कि ऊंचे से ऊंचा कौन सा धर्म है, वो तो जानते नहीं। बाप कहते हैं आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म, देवी देवताओं का धर्म, जो अब प्राय लोप हो गया है, जो अब प्राय लोप हो गया है और अपने को हिंदू कहलाने लग पड़े हैं। अब चीन में रहने वाले अपना धर्म चीन तो नहीं बताएंगे, वो लोग तो जिसको नामी ग्रामी देखते हैं उनको मुख्य करके बिठा देते हैं। कायदे अनुसार कॉन्फ्रेंस में बहुत तो आ नहीं सकते, सिर्फ रिलीजन के हेड्स को ही निमंत्रण दिया जाता है, बहुतों से फिर बहुत बोल चाल हो जाता है। अब उन्हों को राय देने वाला तो कोई है नहीं, उन्हों को राय देने वाला तो कोई है नहीं, तुम हो ऊंचते ऊंच देवी देवता धर्म वाले। अब देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो, तुम ही बता सकते हो, तुम ही बता सकते हो भारत का जो मुख्य धर्म है, जो सब धर्मों का माई बाप है, उनके हेड को इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य बनाना चाहिए। गद्दी नशीन उनको करना चाहिए, बाकी तो सब हैं उनके नीचे। तो मुख्य बच्चे जो हैं उनकी बुद्धि चलनी चाहिए कि हमें क्या करें जो सब इस बात को समझ जाएं और सच्चे रास्ते पर चल पड़े। भगवान अर्जुन को बैठ समझाते हैं, संजय यह है, अर्जुन तो है रथी। संजय यह है, अर्जुन तो है रथी, उनमें रथवान है बाप। समझ में आया? क्यों? संजय है ये,
ये क्या?
जगदीश भाई। और अर्जुन है रथी, जो इस रथ को चला रहा है, ठीक है। और रथवान है शिव बाबा। संजय क्या करता है? अंधों को रास्ता दिखाने का काम करता है। तो जगदीश भाई क्या काम करता है? परमात्मा के ज्ञान को सबको सुनाने के लिए किताबें लिखता है, ठीक है, ताकि सारे उसको सुने। और तुम भी सब संजय हो जो सुनाओ जाकर अंधों को, जो अंधों को रास्ता दिखाए संजय है। क्यों नहीं, जो ना दिखाए वो क्या का संजय? संजय बनना है तो जो अज्ञानता के अंधेरे में भक्ति मार्ग में है जी, महाभारत चल रही है ना ये। अब जो संजय बनेंगे वो इन अंधों को जगाएंगे, उनको बताएंगे सच क्या है। सारे धृतराष्ट्र सोए पड़े, वो समझते हैं रूप बदल कर श्री कृष्ण के तन में आकर ज्ञान दिया है। वो समझते हैं भगवान आया रूप बदल के कृष्ण के अंदर आकर ज्ञान सुनाया, परंतु ऐसे तो है नहीं। अब प्रजापिता भी है, त्रिमूर्ति के ऊपर बहुत अच्छी रीति समझाया जा सकता है। त्रिमूर्ति के ऊपर शिव बाबा का चित्र जरूर होना चाहिए, वो है सूक्ष्म वतन की रचना। बच्चे समझते हैं ये विष्णु है पालन करता, प्रजापिता ब्रह्मा है स्थापन करता, तो उनका भी चित्र चाहिए। ये बड़ी समझ की बात है, बुद्धि में रहता है प्रजापिता ब्रह्मा जरूर है, विष्णु भी चाहिए। जिससे स्थापना कराएंगे उससे ही पालना भी कराएंगे। लाइन नोट करने वाली है, क्या कह रहे हैं बाबा? जिससे स्थापना कराएंगे उसी से पालना कराएंगे ना। जिस आत्मा से स्थापना कराएंगे वही आत्मा फिर क्या करेगी? पालना करेगी। हाँ, स्थापना कराते हैं ब्रह्मा से, ब्रह्मा के साथ कौन है? सरस्वती, और उनके साथ भाई बहन बच्चे, बहुत बच्चे हैं। सरस्वती आदि ये सब कौन है? बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? ब्रह्मा के भी, शिव बाबा के भी। वास्तव में ये भी पतित से पावन बन रहे हैं। तो कॉन्फ्रेंस में आदि सनातन देवी देवता धर्म का हेड कौन है? जगत अम्बा होनी चाहिए, क्योंकि माताओं का बहुत मान है। जगत अम्बा का मेला बड़ा भारी लगता है, वो है जगत पिता की बेटी। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। ये वही महाभारत की लड़ाई सामने खड़ी है। बाप भी कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूं, मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूं। भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाने, जगत अम्बा गॉडेज ऑफ नॉलेज गाई हुई है। जगत अम्बा गॉडेज ऑफ नॉलेज गाई हुई है, उनके साथ ज्ञान गंगाएं भी हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि उनको ये नॉलेज कहां से मिली हुई है। नॉलेजफुल गॉड फादर तो एक ही है, वो नॉलेज कैसे दे, जरूर उनका उनको शरीर लेना पड़े। तो ब्रह्मा मुख कमल से सुनाते हैं, ये माताएं बैठ समझाएंगी कॉन्फ्रेंस में, उनको ये मालूम पड़ेगा, मालूम होना चाहिए ना कि बड़ा धर्म कौन सा है, बड़ा धर्म कौन सा है। ये तो कोई समझते ही नहीं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, बाप कहते हैं। ये धर्म जब प्राय लोप हो जाता है तो मैं आकर फिर स्थापना करता हूं। अभी देवता धर्म है नहीं, बाकी तीन धर्मों की वृद्धि होती जा रही है, तो जरूर देवी देवता धर्म फिर से स्थापन करना पड़े। फिर ये सब धर्म रहेंगे ही नहीं, फिर ये सब धर्म रहेंगे ही नहीं। बाप आते ही हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तुम बच्चियां ही बता सकती हो कि पीस कैसे स्थापन होती है। शांति का सागर तो है ही परमपिता परमात्मा, तो पीस जरूर वही स्थापन करेंगे। ज्ञान का सागर सुख का सागर वही है, गाते भी हैं पतित पावन और बाप के आकर भारत को पावन राम राज्य बनाओ। पीसफुल तो वही बनाएंगे, ये बाप का ही कर्तव्य है। तुम उनकी मत पर चलने से श्रेष्ठ पद पाते हो। बाप कहते हैं जो मेरे बनेंगे, राजयोग सीखेंगे और पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे कि बाबा हम पवित्र बन 21 जन्मों का आपसे वर्षा लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, वही मालिक बनेंगे जो प्रतिज्ञा करेंगे। पतित से पावन बनेंगे, बिना पतित से पावन बने वर्षा ले नहीं सकते। पावन है लक्ष्मी नारायण सबसे ऊंच, फिर अभी पावन दुनिया की स्थापना हो रही है। तुम पीस के लिए कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, परंतु मनुष्य थोड़े ही पीस करेंगे। ये तो शांति के सागर बाप का काम है। कॉन्फ्रेंस में बड़े आदमी आते हैं, बहुत मेंबर्स बनते हैं, उन्होंने राय भी देनी पड़े। फादर शोसन शिव बाबा के पुत्र, ब्रह्मा के बच्चे, गॉडेज ऑफ नॉलेज। ब्रह्मा के बच्चे कौन है? ज्ञान के देवी देवता। उनको गॉड ने नॉलेज दी है। मनुष्य तो शास्त्रों की नॉलेज पढ़ते रहते, किताबें पढ़ते रहते हैं। ऐसे भवके से समझाओ तो बड़ा मजा हो, युक्ति जरूर रचनी पड़ती है। एक तरफ उनकी कॉन्फ्रेंस हो, दूसरी तरफ तुम्हारी भी भवके से कॉन्फ्रेंस हो, चित्र भी क्लियर हैं, जिनसे झट समझ जाएंगे उनका ऑक्यूपेशन अलग है, उनका अलग है। ऐसे थोड़े ही सब एक ही एक हैं, नहीं, सभी धर्मों का पार्ट अलग अलग है। शांति के लिए मिल करके कार्य करते हैं, कहते हैं रिलीजन इज माइट, धर्म शक्की शक्ति है, परंतु सबसे ताकत वाला कौन? वही आकर के पहला नंबर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ये तो तुम बच्चे ही जानते हो, दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को पॉइंट्स मिलती रहती हैं, समझाने की पावर भी है, योगी की पावर अच्छी होगी, जो पवित्र रहता होगा उनमें अच्छी शक्ति होगी। बाबा कहते ज्ञानी तू आत्मा ही मुझे प्रिय है, ऐसे नहीं कि योगी प्रिय नहीं है। जो ज्ञानी होंगे वो योगी भी जरूर होंगे। योग परम पिता परमात्मा के साथ रहते हैं, योग बिगड़ धारणा नहीं होगी। योग नहीं करेंगे तो धारणा नहीं होगी। जिनका योग नहीं है तो धारणा भी नहीं है, क्योंकि देह अभिमान बहुत है। बाप तो समझाते हैं आसुरी बुद्धि को देवी बुद्धि बनाना है। बाप क्या समझाते हैं? आसुरी बुद्धि को देवी बुद्धि बनाना है, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने वाला बाप ईश्वर है। रावण आकर के पत्थर बुद्धि बनाते हैं, उन्हों का नाम ही है आसुरी संप्रदाय। रावण के पास हम आए तो हमें बाबा क्या कहते हैं? रावण आकर के तुम्हें आसुरी संप्रदाय बनाता है। देवी देवताओं के आगे कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं, आप पही तरस हम कामी, हम कपटी, मूर्ख खल कामी। तुम माताएं अच्छी रीति समझा सकती हो, समझाओ उनको अच्छी तरह। क्यों बने पड़े हो मूर्ख, बनो से आने, क्यों बने पड़े हो खल कामी, आ जाओ बनो बाबा के बच्चे। मुरली चलाने का इतना हौसला चाहिए, ज्ञान सुनाने का इतनी समझ चाहिए, हौसला चाहिए, कैसे हम उनको समझाएं। बड़ी बड़ी सभाओं में ऐसी ऐसी बातें करनी पड़े। मम्मा है गॉडेज ऑफ नॉलेज, ब्रह्मा को कभी गॉड ऑफ नॉलेज नहीं कहा जाता। मम्मा को कहा जाता है गॉडेज ऑफ नॉलेज, परंतु ब्रह्मा जो सबसे बड़ी माँ है उससे नहीं कहा जाता गॉड ऑफ नॉलेज। गॉड ऑफ नॉलेज है शिव बाबा। हाँ जी,
इसका कारण क्या हुआ?
कारण ये हुआ कि यदि कह दें गॉड ऑफ नॉलेज ब्रह्मा, गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती, तो इसको दुनिया वालों की आंखें देखेंगी ये पति पत्नी है। उनका तो फिर देह का ही संबंध दिखाई देगा, वो सच को जान नहीं सके। कभी गॉड ऑफ नॉलेज नहीं कहा जाता। सरस्वती का नाम गाया हुआ है, जिसका जो नाम है वही रखते हैं ना। माताओं का नाम बाला करना है। कई गोपों को बहुत देह अभिमान है, समझते हम ब्रह्मा कुमार गॉड ऑफ नॉलेज नहीं है क्या? अरे अरे, खुद ब्रह्मा ही अपने को गॉड ऑफ नॉलेज नहीं कहते। माताओं का बहुत रिगार्ड रखना पड़े। ये माताएं ही जीवन को पलटाने वाली हैं, मनुष्य से देवता बनाने वाली हैं। माताएं भी हैं, कन्याएं भी हैं। अदर कुमारीज का राज तो कोई समझते ही नहीं। अदर कुमारियों के राज तो कोई समझते नहीं। बल शादी की हुई है तो भी ब्रह्मा कुमारियां हैं, शादी करने के बाद भी ब्रह्मा कुमारियां। ये बड़ी वंडरफुल बात है। जिन्हों को बाप से वर्षा लेना है वो समझते हैं, बाकी जिनकी तकदीर में नहीं है वो क्या समझेंगे। उनको कितना समझाते रहो कुछ समझ में नहीं आए। नंबर वार दर्जे जरूर है, वहां भी कोई दास दासियां होंगे, कोई प्रजा होगी, प्रजा भी चाहिए, मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती रहेगी तो प्रजा भी वृद्धि को पाती रहेगी। तो ऐसी ऐसी कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं उसके लिए जो अपने को मुख्य समझते हैं उनको तैयार रहना चाहिए। जिनमें ज्ञान नहीं है वो जैसे छोटे ठहरे, इतनी बुद्धि नहीं है, देखने में बल बड़े हैं, कद शरीर में देखने में बड़े हैं परंतु बुद्धि नहीं है, तो वो छोटे हो जाते हैं। कोई कोई की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए, सारा मदार बुद्धि पर है, छोटे छोटे भी तीखे चले जाते हैं। कोई को की समझाने में बड़ी मिठास होती है, ऐसे तरीके से समझाएंगे बड़ा प्यार मीठा मीठा समझ, बातचीत बड़ी रॉयल करते हैं, समझेंगे ये रिफाइन बच्चे हैं। चलन से भी शो होता है ना, बच्चों की चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए, कोई अनरॉयल काम नहीं करना, जो शाही काम ना हो वो करना ही नहीं। नाम बदनाम करने वाले ऊंच पद पा नहीं सकते, जो बाप का नाम बदनाम करेंगे नहीं पा सकते। शिव बाबा का नाम बदनाम करते हैं तो बाप का भी हक है, क्या हक है समझाने का, बाप का भी हक है समझाने का, काफी है इतना। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास, अब तुम बच्चे समझते हो कि हम जीव आत्माएं परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं, इसको ही मंगल मिलन कहा जाता है। गाया जाता है ना, मंगलम भगवान विष्णु, अभी मंगल है ना, मिलन का, मिलने का मंगल है ना, कल्याणकारी मिलन है ना। ये भगवान वर्षा देते हैं विष्णु कुल का, इसलिए उनको मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता है। अब बाप मिलते हैं जीव आत्माओं से, वो मिलन बड़ा सुंदर है, तुम भी समझते हो, तुम भी समझते हो। अभी हम ईश्वरीय बच्चे बने हैं, ईश्वर से अपना वर्षा लेने के लिए, बच्चे जानते हैं ईश्वर के वर्षे के बाद देवी वर्षा मिलता है, पहले ईश्वरीय वर्षा लोगे फिर देवी देवता बनोगे, अर्थात स्वर्ग में पुनर्जन्म मिलता है। तो तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, तुम खुश नसीब वा सौभाग्यशाली तो कोई नहीं दुनिया में सिवाय ब्राह्मण कुल के, और कोई भी भाग्यशाली हो नहीं सकता। विष्णु को सेकंड नंबर में हो गया, वो देवी गोद हो जाती है, अभी ईश्वरीय गोद है, यहाँ तो ऊंच ठहरा ना। देलवाड़ा मंदिर ईश्वरीय गोद का मंदिर, ईश्वरीय गोद का मंदिर, जैसे अंबा के भी मंदिर हैं, वो इतना संगम युग का साक्षात्कार नहीं कराते, ये देलवाड़ा मंदिर संगम युग का साक्षात्कार कराता है। बच्चों को जितनी समझ है उतना और कोई मनुष्य मात्र को हो ना सके, जितना तुम ब्राह्मणों को समझ है उतनी देवताओं को भी नहीं है, नहीं है। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, वे संगम युगी ब्राह्मणों की महिमा करते हैं, कहते हैं ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को नमस्कार। ब्राह्मण ही नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, करते हैं ऐसे बच्चे ब्राह्मणों को नमस्ते करते हैं। अच्छा, गुड नाइट। हम बच्चों की भी बाप दादा को गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर एक, बाप का प्रिय बनने के लिए ज्ञानी और योगी बनना है, देह अभिमान में नहीं आना है। ज्ञानी और योगी बनना है, देह अभिमान में नहीं आना है, मुरली चलाने का हौसला रखना है, ज्ञान सुनाने का हौसला रखना है, अपनी चलन से बाप का शो करना है, बातचीत बड़े मिठास से करनी है। बातचीत कैसे करनी है, बड़े मिठास से करनी है। वरदान, कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान भव। तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव ना हो। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं दे। भाग्यवान आत्मा कर्म भोग के समय भी किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बन जाती है। कर्म भोग चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी कहानी का विस्तार नहीं करो, उसे वर्णन करना माना समय और शक्ति व्यर्थ गवाना। विस्तार की बातें करते रहेंगे, समय भी बेकार गया, व्यर्थ की बातें करते रहे और शक्ति भी खत्म खर्च हो गई। योगी जीवन माना कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर देना, यही है कर्म भोग का हिसाब बराबर करना। कर्म योग में परिवर्तन कर देना यही है कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर देना यही है भाग्यवान की निशान। एक तरफ है कर्म भोग और एक तरफ है कर्म योग वाला रास्ता चुनना है। स्लोगन है, दृष्टि में रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाती है। फिर कोई भी देह अभिमान आया या अपमान की फीलिंग आई, इसका मतलब क्या होगा, अभिमान या अपमान आता है तो समझो कि देह अभिमान आ ही गया। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं।